एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान और आज हम आपको ले चलेंगे समुद्र की गहराइयों में। एक ऐसी दुनिया जो मतलब कमाल की खूबसूरत है, पर जिसका भविष्य ना आज दांव पर लगा है। हम बात कर रहे हैं प्रवाल भित्तियों की, हाँ, कोरल रीफ्स की।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज इस बेहद ज़रूरी विषय पर हमारी जो चर्चा होगी उसका आधार है प्रोफेसर चार्ल्स शेपर्ड का काम, उनका शोध, उनका लेखन। प्रोफेसर शेपर्ड समुद्री विज्ञान में और ख़ासकर कोरल रीफ्स के अध्ययन में दुनिया के सबसे अनुभवी और कह सकते हैं सम्मानित विशेषज्ञों में से एक हैं।
हाँ, और ये विषय आज इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, जलवायु परिवर्तन है, हमारी अपनी गतिविधियाँ हैं, इनके कारण ये जो नाजुक समुद्री सिस्टम है ना, ये बहुत बड़े संकट में है, अभूतपूर्व संकट।
बिल्कुल, ये क्यों मायने रखते हैं, हम क्या खो सकते हैं, क्या खो रहे हैं और क्या मतलब क्या कुछ किया भी जा सकता है?
हाँ, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम शेपर्ड के काम के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले ये प्रोफेसर चार्ल्स शेपर्ड है कौन? जैसा आपने कहा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में समुद्री विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर हैं और उनका रिसर्च करियर सोचिए 4 दशकों से भी ज्यादा लंबा है। उन्होंने सचमुच अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है कोरल रीफ्स को समझने में।
लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ना, उनका अनुभव तो मतलब कहीं ज्यादा गहरा है।
सही कहा, उन्होंने सिर्फ लैब में बैठ के डेटा नहीं देखा, वो असल में दुनिया भर के जो बड़े बड़े रीफ क्षेत्र हैं ना, वहाँ गए हैं, गोता लगाया है, उन्हें करीब से जिया है। हिंद महासागर हो, खासकर चागोस द्वीप समूह, जहाँ उनका बहुत काम रहा है।
हाँ, सुना है मैंने चागोस के बारे में।
हाँ, लाल सागर, कैरिबियन, प्रशांत महासागर, मतलब आप किसी भी बड़े रीफ एरिया का नाम लें, प्रोफेसर शेपर्ड ने वहाँ जाकर रिसर्च की है। और हाँ, सैकड़ों वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं, कई किताबें भी।
और शायद यही बात उनके नज़रिए को इतना ख़ास बनाती है। एक तो गहरी वैज्ञानिक समझ, वो तो है ही, पर साथ में दशकों का वो ज़मीनी या कहें कि समुद्री अनुभव। वो सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उन बदलावों के गवाह हैं जो उन्होंने इन दशकों में अपनी आंखों से देखे हैं। रीव्स की वो कमाल की जीवंतता भी और उन पर जो खतरे बढ़ रहे हैं वो भी।
सही कहा, और उनकी एक और खासियत है शायद।
हाँ, उनकी एक और बड़ी खूबी ये है कि वो जो मुश्किल वैज्ञानिक बातें होती हैं ना, उनको आम लोगों के लिए आसान बना देती हैं। वो जैसे विज्ञान और समाज के बीच एक पुल का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ये सब महसूस किया है तो उनकी बातों में एक वजन होता है, वो असर करती हैं। तो अब आते हैं प्रोफेसर शेपर्ड के काम के निचोड़ पर। अगर सार में कहें तो उनका काम हमें पृथ्वी के सबसे जटिल, सबसे ज्यादा उत्पादक और सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक से मिलवाता है, यानी कोरल रीफ्स। लेकिन साथ ही वो ये भी साफ करते हैं कि ये दुनिया के सबसे नाजुक और सबसे ज्यादा संकट में घिरे हुए तंत्रों में से भी एक है।
और उनका एक जो मुख्य तर्क है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है इन रीफ्स से जुड़ा एक विरोधाभास। मतलब शेपर्ड बताते हैं कि ये सिस्टम अविश्वसनीय रूप से मजबूत रहे हैं, लाखों सालों तक टिके रहे, बड़े बड़े भूवैज्ञानिक बदलाव झेले, यहाँ तक कि महाविनाश भी।
हाँ, ये कमाल की बात है।
पर आज जो तेज बदलाव हो रहे हैं, खासकर हम इंसानों की वजह से, जलवायु परिवर्तन वगैरह, उसके सामने ये बेहद संवेदनशील साबित हो रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है मजबूती और नाजुकपन का, शायद यही आज के संकट की जड़ है।
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। उनका काम उन आम धारणाओं को भी चुनौती देता है जो रीफ्स को सिर्फ खूबसूरत पानी के नीचे के बगीचे समझती हैं। शेपर्ड हमें दिखाते हैं कि ये असल में कितने जटिल है, कितने गतिशील है, जीवन से भरपूर है।
सही,
उनका लेखन हमें इनकी वो शानदार जटिलता भी समझाता है और इनका जो अनिश्चित भविष्य है उसे समझने के लिए एक वैज्ञानिक आधार भी देता है।
और ये जानकारी सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आम पाठक के लिए है, छात्रों के लिए है, जो नीतियां बनाते हैं उनके लिए है, जो पर्यावरण संरक्षण में लगे हैं उनके लिए है, मतलब हर उस व्यक्ति के लिए जो हमारे ग्रह के इस अनमोल हिस्से को समझना और बचाना चाहता है। इसमें कोरल क्या है, रीफ कैसे बनता है, उनकी जैव विविधता, उनका आर्थिक पारिस्थितिक महत्व, खतरे, बचाव, सब कुछ है।
चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, ये कोरल आखिर हैं क्या और ये इतने बड़े बड़े रीफ बना कैसे लेते हैं? कुछ लोग तो इन्हें पत्थर या पौधे समझते हैं।
हाँ, ये आम गलतफहमी है। कोरल असल में जानवर हैं छोटे छोटे जीव जिन्हें पॉलिप कहते हैं और ये जेलीफिश और सी एनिमोन के रिश्तेदार होते हैं।
अच्छा, जेलीफिश के रिश्तेदार, ये तो नई बात पता चली।
हाँ, और इन रीफ्स का असली राज, वो जादू छुपा है इन कोरल पॉलिप्स और उनके ऊतकों के अंदर रहने वाले नन्हे नन्हे शैवाल माइक्रोस्कोपिक एल्गी में। उन्हें ज़ूज़ैंथेली कहते हैं। इनके बीच एक सहजीवन होता है, सिम्बायोसिस। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है।
सहजीवन मतलब एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना।
बिल्कुल, आप इसे एक तरह की 16 पावर वाली पार्टनरशिप समझ सकती हैं। कोरल पॉलिप इन शैवाल को रहने के लिए एक सुरक्षित घर देता है और जरूरी पोषक तत्व भी। बदले में ये शैवाल क्या करते हैं, वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं।
और वो खाना कोरल को देते हैं?
हाँ, उस खाने का लगभग 90% हिस्सा ऊर्जा के रूप में कोरल को मिल जाता है।
90%? वाओ।
और इसी ऊर्जा से कोरल पॉलिप वो कमाल का काम करते हैं। वो समुद्री पानी से कैल्शियम और कार्बोनेट आयन खींचते हैं और अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का एक मजबूत ढांचा, एक कंकाल बनाते हैं।
अच्छा, तो ये कंकाल बनाते जाते हैं?
हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों लाखों सालों में इन्हीं कंकालों के जमा होने से वो विशाल संरचनाएं बन जाती हैं जिन्हें हम कोरल रीफ कहते हैं।
समझ गया, तो ये कोरल का कंकाल ही रीफ बनाता है। और ये रीफ भी अलग अलग तरह के होते हैं शायद?
हाँ बिल्कुल, जैसे फ्रिंजिंग रीफ होते हैं जो सीधे तट के किनारे किनारे उगते हैं, फिर होते हैं बैरियर रीफ जो तट से थोड़ी दूरी पर होते हैं और बीच में एक लगून या झील जैसी जगह बन जाती है।
जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, वो तो बहुत मशहूर है।
हाँ, वो इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। और फिर होते हैं एटोल, ये किसी डूबते हुए ज्वालामुखी के चारों ओर एक रिंग, एक छल्ले की तरह बनते हैं। बड़े दिलचस्प होते हैं ये। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले समझाया था कि ये एटोल बनते कैसे हैं। अब जरा इन रीफ्स के इतिहास और भूगोल पर भी नजर डाल लेते हैं। शेपर्ड हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी पर रीफ जैसी संरचनाएं कोई आज की बात नहीं है, ये करीब 50 करोड़ सालों से मौजूद हैं।
50 करोड़ साल? अविश्वसनीय।
हाँ, हालांकि इनको बनाने वाले जीव समय के साथ बदलते रहे हैं। आज के जो मॉडर्न कोरल हैं वो भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो काफी नए हैं।
और ये बात भी चौंकाने वाली है कि ये रीफ्स पृथ्वी के इतिहास में कई बार बड़े पैमाने पर विलुप्त हुए हैं। मास एक्सटिंक्शन जिनको कहते हैं, उनको भी झेल गए?
हाँ झेल गए, लेकिन यहाँ शेपर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वो बताते हैं कि उन घटनाओं के बाद रीफ्स को दोबारा पनपने में, ठीक होने में लाखों साल लगे थे।
लाखों साल?
हाँ, और आज जो बदलाव हो रहे हैं उनकी रफ्तार अभूतपूर्व है। इतनी तेज कि शायद इन लचीले कहे जाने वाले सिस्टम्स को भी संभलने का मौका ना मिले। ये रफ्तार ही असली चिंता का विषय है।
अब भूगोल की बात करें तो ये रीफ्स हर कहीं तो नहीं मिलते?
नहीं, हर जगह नहीं, ये खास परिस्थितियों में ही पनपते हैं। आमतौर पर भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच के जो गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्र है ना, वहाँ इन्हें कुछ खास चीजों की जरूरत होती है।
जैसे कि?
तापमान, पानी गर्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इन्हें गर्म पानी पसंद है, आमतौर पर 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर पानी इससे ज्यादा गर्म हो जाए तो वो तनाव में आ जाते हैं और फिर वो ब्लीचिंग का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद हम आगे करेंगे।
ठीक है, और क्या चाहिए इन्हें?
रोशनी, क्योंकि उनके अंदर जो शैवाल रहते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए भरपूर धूप चाहिए। इसलिए रीफ्स साफ उतले पानी में ही मिलते हैं, आमतौर पर 50 मीटर से कम गहराई पर।
अच्छा, और पानी का खारापन भी ठीक होना चाहिए? मतलब नदियों का मीठा पानी इनके लिए अच्छा नहीं है?
बिल्कुल नहीं, पूरा समुद्री पानी चाहिए इन्हें। और एक और दिलचस्प बात जो थोड़ी उल्टी लगती है, इन्हें ऐसा पानी पसंद है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम हो।
पोषक तत्व कम हो? ये तो अजीब बात है, मुझे लगा था पोषक तत्व तो अच्छे होते हैं।
हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर बात यह है कि अगर पानी में पोषक तत्व ज्यादा होंगे जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो वो समुद्री शैवाल मतलब सीवीड के लिए दावत जैसे होते हैं। वो फिर इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि कोरल को ढक लेते हैं, उनका दम घोट देते हैं।
ओहो, तो इसलिए रीफ्स उन जगहों पर पनपते हैं जिन्हें समुद्री रेगिस्तान कहते हैं, जहां पोषक तत्व कम होते हैं।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां उनके ये दुश्मन, ये तेजी से बढ़ने वाले शैवाल भूखे मरते हैं। दुनिया के जो मुख्य रीफ क्षेत्र हैं वो कैरेबियन, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में हैं।
और एक जगह का जिक्र आपने किया था, कोरल ट्राइंगल।
हाँ, कोरल ट्राइंगल ये दक्षिण पूर्वी एशिया में है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देशों के बीच का समुद्री इलाका। इसे समुद्री जैव विविधता का ग्लोबल हॉटस्पॉट माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरल और रीफ मछलियों की प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। कमाल की जगह है।
तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये रीफ्स हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इनका मूल्य क्या है, सिर्फ खूबसूरती के अलावा?
देखिए, इनका मूल्य बहुत ज्यादा है कई मायनों में। सबसे पहले तो इनकी अविश्वसनीय जैव विविधता, इन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है।
हाँ, ये तुलना मैंने सुनी है।
और ये बिल्कुल सही है। सोचिए, ये समुद्र तल के 1% से भी कम हिस्से पर फैले हैं, 1% से भी कम। लेकिन अनुमान है कि समुद्र में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों में से करीब 25% इन्हीं रीफ्स में अपना घर बनाती हैं।
1/4 प्रजातियां सिर्फ 1% जगह में?
हाँ, इसमें 4000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां हैं और लाखों दूसरे जीव, कीड़े मकोड़े, मोलस्क, क्रस्टेशियन, एक पूरी दुनिया है।
अविश्वसनीय। और दूसरा महत्व?
दूसरा, तटीय सुरक्षा। रीफ्स लहरों के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं, एक ब्रेक वाटर। ये तूफानों और सुनामी के दौरान आने वाली लहरों की आप अंदाजा लगाइए कितना,
शायद आधी, 50%,
97% तक ऊर्जा सोख लेते हैं।
97%? हाँ।
इससे तटों पर रहने वाले जो समुदाय हैं, उनकी संपत्ति है, उसकी रक्षा होती है। ये हर साल अरबों डॉलर के नुकसान को रोकते हैं और अनगिनत जाने बचाते हैं। भारत का समुद्र तट इतना लंबा है, हम इसका महत्व समझ सकते हैं।
बिल्कुल। और तीसरा?
तीसरा, मत्स्य पालन। रीफ्स मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के लिए नर्सरी की तरह है, बच्चे पैदा करने की जगह, बड़े होने की जगह। दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग,
आधी अरब आबादी।
हाँ, 50 करोड़ लोग अपनी रोजमर्रा की रोटी और प्रोटीन के लिए सीधे तौर पर रीफ्स पर निर्भर हैं। भारत के तटीय इलाकों में तो लाखों मछुआरों का जीवन इन्हीं पर टिका है।
चौथा,
पर्यटन। ये तो जाहिर है, कौन नहीं देखना चाहेगा इन रंगीन पानी के नीचे की दुनिया को।
बिल्कुल, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, इनके लिए रीफ्स दुनिया भर से पर्यटकों को खींचते हैं। इससे अरबों डॉलर का पर्यटन उद्योग चलता है,
स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे हम अंडमान या लक्षद्वीप में देखते हैं।
हाँ, सही।
और पांचवा एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में कम बात होती है, बायो प्रोस्पेक्टिंग।
बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये क्या है?
मतलब रीफ्स में रहने वाले जीवों में ऐसे अनोखे रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल नई दवाएं बनाने में हो सकता है, कैंसर, गठिया, वायरस और भी कई बीमारियों के इलाज के लिए। ये भविष्य की दवाओं का एक अनदेखा खजाना हो सकता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये अनमोल खजाने आज गंभीर खतरे में हैं। शेपर्ड इन खतरों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, एक तो वैश्विक खतरे जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, और दूसरे स्थानीय खतरे जो किसी खास इलाके में ज्यादा असर डालते हैं।
और चिंता की बात यह है कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के असर को बढ़ा देते हैं।
हाँ बिल्कुल, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसे कहते हैं, ये मिलकर रीफ्स की कमर तोड़ देते हैं।
तो पहले वैश्विक खतरों की बात करते हैं जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। इनमें सबसे बड़ा खतरा क्या है?
हुए महासागरों का गर्म होना और उससे होने वाली कोरल ब्लीचिंग। जब पानी का तापमान सामान्य से सिर्फ 1-2 डिग्री सेल्सियस भी ज्यादा हो जाता है।
हाँ।
सुनने में ये बहुत कम लगता है।
हाँ, 1-2 डिग्री क्या होता है?
पर कोरल के लिए ये बहुत ज्यादा है। वो तनाव में आ जाते हैं और इस तनाव में वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर रहने वाले रंगीन सहजीवी शैवाल, वो जुगजांथेली, उनको बाहर निकाल देते हैं।
अच्छा, उन्हें निकाल देते हैं।
और क्योंकि कोरल का अपना रंग तो होता नहीं, तो उनका सफेद कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल दिखने लगता है। इसी को ब्लीचिंग कहते हैं।
बिल्कुल, कोरल सफेद पड़ जाता है। तो क्या इससे कोरल मर जाते हैं या सिर्फ रंग बदलता है?
अगर पानी का तापमान जल्दी से वापस नॉर्मल नहीं होता, तो बिना उन शैवाल से मिलने वाले भोजन के कोरल भूखे मरने लगते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। शेपर्ड ने अपने लंबे करियर में इन ब्लीचिंग की घटनाओं को बढ़ते हुए देखा है। पहले ये कभी कभार होती थी, अब ग्रेट बैरियर रीफ जैसे बड़े बड़े इलाकों में हर कुछ साल में हो रही हैं, बड़े पैमाने पर, और रीफ्स को तबाह कर रही हैं।
ये तो बहुत डरावनी बात है। और दूसरा बड़ा वैश्विक खतरा, वो है महासागर अम्लीकरण, ओशन एसिडिफिकेशन।
हाँ, इसे अक्सर जलवायु परिवर्तन का जुड़वा भाई या दूसरा CO2 प्रॉब्लम कहा जाता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, जब हम कोयला, तेल, गैस जलाते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बढ़ती है।
हाँ।
इस एक्स्ट्रा CO2 का लगभग 1/4 हिस्सा समुद्र सोख लेते हैं। अब सुनने में ये अच्छा लग सकता है कि चलो समुद्र हमारी मदद कर रहा है, लेकिन इससे समुद्र के पानी की केमिस्ट्री बदल रही है। पानी ज्यादा एसिडिक हो रहा है, उसका pH कम हो रहा है, बनाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है और जो मौजूदा रीफ स्ट्रक्चर हैं वो भी कमजोर होकर घुलने लग सकते हैं।
बाप रे, तो मतलब दोहरा झटका है, पानी गर्म भी हो रहा है और एसिडिक भी।
हाँ, अब आते हैं स्थानीय और प्रत्यक्ष खतरों पर जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़े होते हैं। इसमें सबसे ऊपर है प्रदूषण।
प्रदूषण जैसे?
जैसे खेतों से बहकर आने वाले उर्वरक, खाद वगैरह, शहरों से निकलने वाला सीवेज, गंदा पानी। जब ये बिना ट्रीटमेंट के समुद्र में मिलता है तो उसमें पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये पानी में जाते ही शैवाल, एल्गी की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं।
अच्छा, वही शैवाल जो कोरल के दुश्मन है?
हाँ, वो शैवाल फिर कोरल को ढककर मार देते हैं।
इसके अलावा मिट्टी वगैरह का प्रदूषण भी होता होगा?
हाँ बिल्कुल, तटों पर जो कंस्ट्रक्शन होता है या पहाड़ों पर जंगलों की कटाई होती है, उससे मिट्टी बहकर समुद्र में आती है। ये तलछट, सेडिमेंट पानी को गंदा कर देती है, सूरज की रोशनी रुक जाती है जो कोरल के शैवाल के लिए जरूरी है, और ये मिट्टी सीधे कोरल पॉलिप्स का दम भी घोंट सकती है।
ये तो हम अपने आसपास भी देखते हैं, नदियों में मिट्टी बहते हुए, वैसा ही असर समुद्र में भी।
हाँ, और औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक प्रदूषण, वो तो है ही।
एक और बड़ा स्थानीय खतरा आपने बताया था, ओवरफिशिंग, मतलब बहुत ज्यादा मछली पकड़ना।
हाँ, अत्यधिक मछली पकड़ना और मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीके। जब हम बहुत ज्यादा मछलियाँ पकड़ लेते हैं, खासकर वो शाकाहारी मछलियाँ जैसे तोता मछली, पैरट फिश, जो शैवाल खाकर रीफ को साफ रखती हैं।
तो शैवाल कोरल पर हावी हो जाते हैं।
बिल्कुल, और कुछ लोग तो और भी बुरा करते हैं, डायनामाइट से या साइनाइड जहर से मछली पकड़ते हैं। ये तरीके तो पूरे के पूरे रीफ को ही मलबे में बदल देते हैं। ये सरासर बर्बादी है।
और आखिर में तटीय विकास, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है।
हाँ, जैसे जैसे तटों पर शहर बढ़ रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, मरीना, होटल, कई बार सीधे रीफ्स के ऊपर ही बना दिया जाता है या उन्हें हटा दिया जाता है। इसके अलावा ड्रेजिंग होती है, समुद्र तल की खुदाई, लैंडफिलिंग होती है, समुद्र में मलबा भरकर जमीन बनाना। इन सब से और कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण से भी आसपास के रीफ्स को भारी नुकसान पहुंचता है।
तो इतने सारे खतरे हैं, वैश्विक भी, स्थानीय भी। ये सब सुनकर तो मन में सवाल उठता है कि क्या इन रीफ्स का कोई भविष्य है भी? क्या इन्हें बचाया जा सकता है? शेपर्ड का काम क्या कहता है इस बारे में? कोई उम्मीद है?
देखिए, शेपर्ड आशावादी हैं लेकिन यथार्थवादी भी। वो कहते हैं कि कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, हमें एक दो तरफा रणनीति अपनानी होगी, स्थानीय स्तर पर प्रबंधन और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई, दोनों साथ साथ।
ठीक है, तो स्थानीय प्रबंधन में क्या क्या आता है?
इसमें वो सब कदम आते हैं जिनसे हम सीधे लोकल खतरों को कम कर सकें, जैसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाना, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज या MPAs, और उन्हें सिर्फ बनाना नहीं बल्कि सख्ती से लागू भी करना, ताकि मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सके और रीफ्स को थोड़ा सांस लेने, ठीक होने का मौका मिले।
और वो जो जमीन से प्रदूषण आ रहा था उसे रोकना?
हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, जैसे खेती के तरीकों में सुधार करना ताकि कम खाद, कम कीटनाशक बहकर समुद्र में जाए, शहरों के सीवेज का बेहतर ट्रीटमेंट करना, कुछ जगहों पर जो रीफ्स खराब हो गए हैं उन्हें दोबारा उगाने की कोशिशें भी हो रही हैं, जैसे कोरल गार्डनिंग।
कोरल गार्डनिंग, ये क्या होता है?
इसमें कोरल के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उन्हें नर्सरी में उगाया जाता है, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वापस रीफ पर लगा दिया जाता है, एक तरह से कोरल का प्रत्यारोपण।
अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है।
हाँ दिलचस्प है, लेकिन शेपर्ड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये बहाली के जो प्रयास हैं, ये भले ही महत्वपूर्ण हो पर ये छोटे पैमाने पर ही संभव है, बहुत महंगे भी हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ लक्षणों का इलाज है, बीमारी का नहीं।
और बीमारी की जड़?
बीमारी की जड़ है जलवायु परिवर्तन। अगर हम उस पर हमला नहीं करते तो ये सारे स्थानीय प्रयास, ये कोरल गार्डनिंग वगैरह, ये सब आखिर में नाकाफी साबित होंगे।
तो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वैश्विक कार्रवाई।
बिल्कुल, शेपर्ड का संदेश एकदम साफ है और लगभग सारे वैज्ञानिक इससे सहमत हैं। अगर हमें कोरल रीफ्स को बचाना है तो हमें जलवायु परिवर्तन के मूल कारण यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर कम करना होगा, ताकि महासागरों का गर्म होना रुके, उनका अम्लीकरण रुके।
इसका मतलब है कि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के तरीके बदलने होंगे, कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करनी होगी, साफ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी तरफ तेजी से बढ़ना होगा।
हाँ, और जो पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते हैं, उनका सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से पालन करना होगा। हर देश को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
तो निष्कर्ष यही है कि हमें तुरंत एक्शन लेना होगा, निर्णायक एक्शन।
हाँ, और ये कड़वा सच भी स्वीकार करना होगा कि शायद हम कुछ रीफ्स को पहले ही खो चुके हैं या खो देंगे, लेकिन अगर हम जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा दें और साथ ही स्थानीय स्तर पर रीफ्स की सुरक्षा और प्रबंधन को मजबूत करें, तो हम कई रीफ्स को भविष्य में अनुकूलन करने और जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं, एक लड़ने का मौका।
तो इस पूरी चर्चा से चार्ल्स शेपर्ड के काम के आधार पर कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं, क्या टेकअवेज हैं?
पहली बात तो मेरे लिए यही है कि ये कोरल रीफ्स कितने ज्यादा जटिल हैं, कितने इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब यहाँ हर एक चीज मायने रखती है, वो छोटे से शैवाल से लेकर बड़ी शार्क तक। एक भी कड़ी टूटी तो पूरी चेन पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात वो विरोधाभास जिसका हमने जिक्र किया था, लाखों साल का लचीलापन लेकिन आज के तेज रफ्तार बदलावों के सामने उनकी भेद्यता, वल्नरेबिलिटी। ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत में कई तटीय समुदाय हैं, पीढ़ियों से समुद्र के किनारे रहते आए हैं, लेकिन अब बदलते मौसम, बढ़ते समुद्र स्तर के कारण वो पहले से कहीं ज्यादा खतरे में हैं। उनका सदियों का अनुभव भी आज की चुनौतियों के सामने कम पड़ रहा है।
हाँ, ये बहुत सही उदाहरण है। तीसरा, वो सहजीवन, सिम्बायोसिस। कोरल और शैवाल के बीच की वो पार्टनरशिप ही रीफ के जीवन का आधार है। ये दिखाता है कि प्रकृति में सहयोग कितना शक्तिशाली और कितना जरूरी है।
चौथा, मानव कल्याण और रीफ का स्वास्थ्य, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अटूट रूप से। रीफ सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, वो करोड़ों लोगों के लिए खाना है, सुरक्षा है, रोजगार है। भारत के संदर्भ में सोचिए, हमारे लाखों मछुआरों की आजीविका, हमारे तटों की सुरक्षा, पर्यटन से होने वाली आय, ये सब स्वस्थ रीफ्स पर निर्भर करता है।
और पांचवा और शायद सबसे जरूरी संदेश, जलवायु कार्रवाई की तत्काल जरूरत, अर्जेंसी। शेपर्ड और लगभग सभी रीफ वैज्ञानिक इस पर एक मत हैं कि अगर हमने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की तो इस सदी के अंत तक दुनिया के ज्यादातर कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगे। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके विनाशकारी लोकल परिणाम होंगे।
इन सब बातों से यही समझ आता है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, एक मल्टी स्केल अप्रोच। लोकल मैनेजमेंट भी करना होगा, जैसे प्रदूषण रोकना, MPAs बनाना, और ग्लोबल एक्शन भी लेना होगा, जलवायु परिवर्तन से निपटना। ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
शेपर्ड के लेखन में कुछ बहुत यादगार विचार या उपमाएं हैं जो रीफ्स के सार को पकड़ लेती हैं। एक तो वही जिसे अक्सर दोहराया जाता है, कोरल रीफ्स समुद्र के वर्षावन है। ये उनकी अविश्वसनीय जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व को बहुत अच्छे से समझाता है ना?
हाँ, बहुत अच्छी उपमा है। और एक मुझे बहुत पसंद आई थी, कोरल एक ऐसा जानवर है जिसने बागवानी करना सीख लिया है।
बागवानी करना सीख लिया है।
हाँ, ये कोरल और उसके अंदर रहने वाले सहजीवी शैवाल के रिश्ते की सुंदरता और उसकी चतुराई को दिखाता है। कैसे कोरल अपने अंदर उन शैवाल को उगाते हैं और उनसे पोषण पाते हैं।
लेकिन साथ ही कुछ बहुत गंभीर चेतावनियां भी हैं, जैसे ये विचार के स्थानीय खतरे और ग्लोबल वार्मिंग मिलकर एक घातक संयोजन बनाते हैं, एक डेडली कॉम्बिनेशन। ये बताता है कि कैसे ये अलग अलग प्रेशर एक साथ आकर रीफ्स की बर्दाश्त करने की ताकत को तोड़ देते हैं।
और शायद सबसे कठोर चेतावनी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के बिना अधिकांश कोरल रीव्स इस सदी में जीवित नहीं रहेंगे। ये स्थिति की गंभीरता को साफ साफ बताता है, और ये भी कि जलवायु कार्रवाई अब कोई चॉइस नहीं है, वो एक जरूरत है, अनिवार्यता है।
हाँ, ये सारे विचार हमें रीव्स की वो नाजुक सुंदरता, उनकी अविश्वसनीय जटिलता और उन पर मंडरा रहे अस्तित्व के संकट, इन तीनों पहलुओं की याद दिलाते हैं।
तो इस सारी जानकारी सुनने के बाद
एक आम नागरिक के तौर पर हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं? कुछ छोटे छोटे कदम?
हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो है जागरूकता, अवेयरनेस। ये समझना कि हमारी रोजमर्रा की पसंद, हम कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, कैसे सफर करते हैं, क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं, इन सब का हमारे कार्बन फुटप्रिंट पर असर पड़ता है, और ये दूर समुद्र में बैठे रीफ्स को भी प्रभावित कर सकता है। ये कनेक्शन समझना जरूरी है।
दूसरा, अगर आप कभी रीफ वाले इलाकों में घूमने जाएं, तो एक जिम्मेदार पर्यटक बने। ऐसे टूर ऑपरेटर चुने जो पर्यावरण का ध्यान रखते हों। रीफ सेफ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। आजकल आती हैं ऐसी सनस्क्रीन जिनमें वो केमिकल नहीं होते जो कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं।
हाँ ये जरूरी है, और सबसे अहम बात, कभी भी कोरल को छुए नहीं, उन पर खड़े ना हो, और कोई भी चीज, चाहे वो मरा हुआ कोरल का टुकड़ा ही क्यों ना हो, यादगार के तौर पर उठाकर ना लाएं, उन्हें वहीं रहने दें।
तीसरा, हम अपने खान पान में समुद्री भोजन सी फूड के चयन में सावधानी बरत सकते हैं। ओवर फिशिंग के खतरों को समझें और कोशिश करें कि ऐसा सी फूड चुनें जो सस्टेनेबल तरीकों से पकड़ा गया हो। इसके लिए अब ऑनलाइन गाइड वगैरह भी उपलब्ध है।
और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अपना व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश करें। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार ऊर्जा बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या पैदल चलने को प्राथमिकता दें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, अपने आहार में मांसाहार, खासकर रेड मीट कम करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने बार बार सुना, जलवायु परिवर्तन ही रीफ्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
बिल्कुल, और इसके अलावा हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो कोरल रीफ्स के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर या पॉलिसी लेवल पर काम कर रहे हैं, और हम ऐसी नीतियों की वकालत कर सकते हैं जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ावा दें और जलवायु परिवर्तन पर एक्शन को तेज करें। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य का, हमारी अर्थव्यवस्था का और करोड़ों लोगों के जीवन का भी सवाल है।
इस ज्ञान गोष्ठी से मेरे लिए एक सबसे बड़ा सबक ये है कि ये प्रवाल भित्तियाँ, ये कोरल रीफ्स एक ही समय में प्रकृति की अद्भुत रचनात्मक शक्ति और उसके लचीलेपन का प्रतीक हैं, और साथ ही हम इंसानों की गतिविधियों से होने वाले तेज बदलावों के प्रति उसकी गहरी संवेदनशीलता का भी। वो सचमुच हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का आईना है, बैरोमीटर है।
और मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात ये समझ आई है कि आज की जो जटिल पर्यावरणीय समस्याएं हैं ना, उनका समाधान किसी एक लेवल पर नहीं हो सकता। हमें एक साथ कई पैमानों पर काम करना होगा, लोकल लेवल पर भी जैसे प्रदूषण रोकना, और ग्लोबल लेवल पर भी जैसे जलवायु कार्रवाई। रीफ्स का संकट हमें यही सिखाता है कि दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही बेहद जरूरी हैं।
और शायद सोचने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरल रीफ्स का जो वर्तमान संकट है, वो असल में हम सबकी, पूरी मानवता की एक परीक्षा है। क्या हम सब मिलकर समय रहते इतने महत्वपूर्ण और इतने खूबसूरत इकोसिस्टम को बचाने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति और एक्शन दिखा पाएंगे? ये सवाल भविष्य ही बताएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।